آخر کا مقام رکھتی ہے. صبر کے جتنے پہلو ہیں اس کی حقیقت, اس کا طریق, اس کا بہترین مطلب, اس کے مقاصد اور کیا کچھ صبر تمہیں عطا کر سکتا ہے, یہ ساری باتیں اس مختصر سی آیت میں بیان ہو گئی ہیں. جہاں تک صبر کا عام مفہوم ہے, یعنی غیر مذہبی عام دنیاوی تصور, اس میں بے چارگی کے معنی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اور بے اختیاری کے معنی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. ایسا غم اور ایسی مصیبت جو کسی کو مغلوب کر لیں اور جن کے مقابلے کی کوئی انسان طاقت نہ پاتا ہو اور کوئی چارہ نہ پائے کہ کس طرح اس کے ان مصائب کے چنگل سے نکل سکے, اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اسے دنیاوی مفہوم میں صبر کہتے ہیں. اور ایسے صبر کا نتیجہ عموماً ایک اندرونی آگ ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو جلاتی رہتی ہے, اور اس کے نقصانات تو ہیں, اس کے فوائد کا کوئی اس کے فوائد پہنچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایسا صبر جو بے اختیاری کا صبر ہو, وہ بعض دفعہ مصیبتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور مصیبتوں کی یاد اس کے ساتھ پیوستہ ہو جاتی ہے, اور بجائے اس کے کہ ایک دکھ آئے اور گزر جائے, ایسے صبر کے نتیجے میں وہ دکھ ایک مستقل زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, ایک روگ بن جاتا ہے. بس قرآن کریم نے صبر کا جو مفہوم بیان فرمایا وہ اس عام مفہوم سے بالکل الگ کر کے بیان فرمایا, اور صبر کے مضمون کو انتہائی بلند مقام تک پہنچا دیا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, یہ جو عام دنیاوی مفہوم ہے اس میں صبر اور عمل کا کوئی جوڑ نہیں ہے. عام طور پر جن حالات میں دنیا والے صبر کرتے ہیں ان کو عمل کی راہ نہیں دکھائی دیتی ہے, اور صبر بالعموم مایوسی کے پہلو رکھتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو अपने सब्र को एक फाल कुवत में तब्दील करते रहो। इस तईनू सब्र के नतीजे में खुदा से दुआ मांगो और मदद चाहो। अगर मायूसी हो तो मदद चाहने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता। हमेशा तुम्हारे सब्र के साथ एक उम्मीद का पहलू जिंदा रहना चाहिए और सब्र के नतीजे में खुदा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते रहो इस कामिल यकीन के साथ कि किसी न किसी वक्त अल्लाह ताला की मदद आकर तुम्हारी मुश्किलात को दूर फरमा देगी। अल्लाह से इस्तेआनत के मजमून ने मायूसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इंतहाई नामुमकिन हालात में भी उम्मीद की एक लौ रोशन कर दी। उम्मीद की एक किरण मोमिन को दिखा दी कि एक निजात का रास्ता बाकी है, वो अल्लाह ताला से मदद मांगने का रास्ता है। बस मुसीबत रहता है और खुदा ताला से मदद मांगने के मजमून में इस उम्मीद को एक जिंदा फाल कुवत में तब्दील कर दिया। दूसरा माना इस तईनू बिसब्र का ये भी है और इसी मजमून को आगे बढ़ाने वाला माना है कि जब खुदा से मदद मांगा करो तो सब्र के साथ मदद मांगा करो। चंद दिन मदद मांग के छोड़ नहीं देना, दुआ में जल्दी नहीं करनी, जल्दी नतीजे निकलने की तमन्ना रखते हुए दुआएं नहीं करनी, बल्कि दुआ में भी सब्र के मजमून को दाखिल कर लो। इस तईनू बिसब्र इस तरह खुदा से मदद मांगो कि हमेशा मांगते ही चले जाओ और मदद मांगते हुए कभी भी ना थको और उसे उस मदद मांगने के तरीक को मुस्तकिल पकड़ के बैठ जाओ। सब्र का माना इस पहलू से वफा के साथ किसी चीज पर कायम हो जाना है। तो इस तईनू बिसब्र का मतलब है कि कामिल वफा के साथ दुआ पर लगे रहो और किसी हालत में भी दुआ नहीं छोड़नी, किसी हालत में भी ये ख्याल नहीं करना कि हमारी दुआ क्योंकि कबूल नहीं हुई इसलिए ये दुआ करनी अब दुआ करना बस है। चुनाचे अंबिया की जो दुआएं हैं कुरान करीम में मिलती हैं उनमें ये मजमून भी बयान हुआ है कि सब्र के साथ बाज़ दुआएं करने वाले नबी ऐसे थे जिन्होंने आखिर खुदा को पुकार के ये कहा कि हमारी दुआओं में इतना सब्र है कि हमारे बाल सफेद हो गए, हमारी हड्डियां गल गई और बज़ाहिर नामुमकिन है कि इस हालत में औलाद का हो, लेकिन ऐ खुदा देख मेरी दुआ का सब्र कि आज भी इस यकीन के साथ दुआ कर रहा हूं कि कभी मैं तेरी सुस्ते दुआएं मांगते हुए बदबख्त बेबख्त साबित नहीं हुआ, बदनसीब साबित नहीं हुआ। तो इस मजमून को सब्र के मजमून को इसने और भी कई चांद लगा दिए। मुहावरा तो चार चांद लगाने का है मगर मैंने अमदन कई चांद कहा है। हैरत अंगेज तौर पर यह मजमून लामहदूद हो जाता है। सब्र करो इस्तेआनत के साथ खुदा से दुआ मांगते हुए, यानी हमेशा इस यकीन पर कायम रहो कि तुम्हारी मुसीबत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकेगी। दूसरे दुआ में सब्र करो और दुआ का दामन कभी न छोड़ो। ये दो बातें जब एक दूसरे के साथ व्यवस्था होती हैं, एक दूसरे को ताकत देती हैं, तो सब्र का मजमून जो है वो अजीम शान बन जाता है और लामहदूद हो जाता है। इसके साथ ही फरमाया वस्सलात सलात और सब्र का क्या ताल्लुक है, इसके कई ताल्लुक हैं और सलात के माने भी मुख्तलिफ हैं और उन मुख्तलिफ मानी के साथ सब्र और सलात का ताल्लुक नए नए रूप धारता रहता है, नई शक्लों में सामने आता है। सलात का एक माना कोशिश और जिद्दोजहद और वर्जिश भी है। चुनाचे इस पहलू से जब हम वस्तईनू बिसब्र व सलात पढ़ते हैं तो मुराद यह है कि महज दुआएं न करो बल्कि अमल भी साथ करो। महज दुआ पर इस तरह इंसार नहीं करना सब्र में, या खुदा हम तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ तुझसे छोड़कर बैठ रहे हैं, इसको हाथ तोड़कर बैठ जाना कहते हैं। फरमाया नहीं, मोमिन की ये शान नहीं है। जितनी ताकत है उस ताकत को साथ साथ इस्तेमाल करके अपनी कुव्वत अमल को मरने नहीं देना, बल्कि हमेशा उसे भी जिंदा रखना। तो दुआ और सबर और सलात का ये रिश्ता मोमिन की जिंदगी की एक अजीब तस्वीर खींचता है। इम्कान नजर आए कोशिश का, उस कोशिश को नहीं छोड़ना, क्योंकि सलात में जो मफहूम पाया जाता है अमल का, उसमें सिर्फ आम अमल नहीं बल्कि वर्जिश है। वर्जिश का मफहूम कोशिश को इंतहा तक पहुंचाने को के माने रखता है। इतनी कोशिश करना कि बदन थक जाए, और उससे ज्यादा फिर कोशिश इंसान को हलाक करने का मुरीद बन सकती है। और इतनी कोशिश करना कि जो अपनी इस्तेआत की हद के अंदर हो, उससे आगे न बढ़े, क्योंकि वो वर्जिश जो इस्तेआत से आगे बढ़ जाए वो मार दिया करती है, नुकसान पहुंचाती है, उसे सलात कहते ही नहीं। वर्जिश के मफहूम में ये बात दाखिल है कि उतनी कोशिश के थकात हो गए मगर जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर नुकसान पहुंचाने वाली वर्जिश है तो उसका नाम वर्जिश रहेगा ही नहीं, उसका नाम तो सजा हो जाएगा या बेदाग हो जाएगा। इसलिए सलात का माना यहां ये बनेगा, हद इस्तेआत तक कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो जो तुम्हारी ताकत बढ़ाती रहे, तुम्हारे अंदर मजीद कुव्वत अमल पैदा करती रहे, तुम्हें अमल से मुतनफर करने वाली या तुम्हारी अमली ताकतों को कमजोर बनाने वाली कोशिश ना हो। सबर के मफहूम में गम का पहलू भी है, और जैसा कि मैंने बयान किया है एक अंदरूनी आग में जलना भी इसके मफहूम में दाखिल है। और अक्सर दुनिया वाले इससे खूब वाकिफ हैं, इसीलिए बाज माहरीन नफ्सियात सब्र के खिलाफ तलकीन करते हैं। वे कहते हैं कि सब्र करना यानी अपने गम को अपने दुख को अपनी जात में महदूद रखकर उस पर बैठ रहना, ये नफ्सियाती लिहाज से इंसान के लिए मुजिर है बल्कि मोहलिक भी साबित हो सकता है। इसलिए वो लोग जो सब्र करते हैं उनके नजदीक वो कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए बाज़ दफा अगर गैर मामूली सब्र करने की कोशिश की जाए और मसलन आंसू ना निकले या वावेला ना करे कोई शख्स, तो कहते हैं वो पत्थर हो गया और उसके नतीजे में उसे गहरी नफ्सियाती बीमारियां लग जाती हैं जो बाद में जिस्मानी आवारे में भी तब्दील हो जाती हैं। इसका क्या इलाज खुदा ताला मोमिन को बताता है? एक इलाज तो इस तईन के लफ्ज ने हमें दे दिया कि वावेला तो नहीं करना लेकिन मदद जरूर मांगनी, और बड़े जोर के साथ मांगनी है और मुस्तकिल मांगते चले जाना। मदद मांगना वावेले का बदल है, मायूसी के नतीजे में वावेला पैदा होता है, और खुदा ताला जो मोमिन को सब्र सिखाता है उसके नतीजे में दुआ निकलती है और खुदा से मदद मांगने की तरफ तवज्जो मजबूर होती है। एक इसका आउटलेट, एक निकास का रुख अव्वल रख लिया है शायद के शुरू में, और एक इसके आखिर पर रख लिया यानी वस्सलात में। फरमाया वस्तईनु बिस सब्र वस्सलात। सलात का माना भी जलना है, और मसल मुफरदात में इमाम रावी लिखते हैं कि बाज अहले इल्म के नजदीक वो नमाज जिसे हम सलात कहते हैं यानी इबादत, उसका असल सलायन है, सला यसला सलियन यानी वो जला या आग में दाखिल हुआ, आग में भूनता रहा। सलियन कहते हैं आग में दाखिल होने को, आग में जलने को या आग में भूनते रहने को। तो इसमें भी एक जलने का मफहूम है और उसी से इबादत का मफहूम इस तरह निकला कि बाज़ उलमा के नजदीक इन साबिक उलमा के नजदीक तो सल्ला कहकर आग से दिफा के माने पैदा कर दिए। जब सलाह को सल्ला में तब्दील किया जाए तो उसके दो मानी हो सकते हैं, एक उन मानों में शिद्दत पैदा हो जाए यानी बाब तफीम में आकर मानों में शिद्दत भी पैदा हो जाती है और बाज़ दफा पहले मानी की नफी पैदा हो जाती है यानी उन मानी को दूर करने वाला बाब है। तो गुज़श्ता उलमा ने तो इसका यह मतलब लिया कि सल्ला का मतलब है उसने आग को अपने से दूर कर दिया यानी नमाज पढ़ के इबादत करके जहन्नम की आग से बच गया या दुनिया में जो भी जलने के मौके हैं उनसे उसने निजात पाई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक और मफहूम लिया है जो बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और हकीम है। आप फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की आग में जलना है और शिद्दत के साथ जलना है, यानी जलने की नफी नहीं है बल्कि जलने के मज़मून में शिद्दत पैदा हुई। और फरमाया जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत की आग भड़क उठती है हर दूसरी आग उस पर हराम कर दी जाती है। मोहब्बत इलाही की आग गालिब आ जाती है हर दूसरी आग पर और उसमें जलने के बाद दूसरी आग बेमानी भी दिखाई देने लगती है, उसकी हकीकत ही कोई बाकी नहीं रहती। तो सबर के मफहूम सबर के साथ यहां इस आयत में जब बाद में सलात का जिक्र फरमाया तो बताया कि हम जानते हैं कि नफ्सियाती लिहाज से तुम जलोगे, तुम्हें लाजमन जलना है, दुख में मुब्तला हो। हम ये नहीं कहते कि इस पर ढकना बंद करके बैठ रहो ऊपर, बल्कि ये कहते हैं इस आग को मोहब्बत इलाही की आग में तब्दील कर दो। इस तईनू जिससे मदद मांगोगे अगर मोहब्बत के साथ उससे मदद मांगोगे तो उसमें और भी ज्यादा कुवत पैदा हो जाएगी। इस तईनू भी सब्र व सलात एक तरफ वावेले की बजाय दुआ का मज़मून सिखाकर शिद्दत के साथ पुकार के अपने दिल के बोझ को हल्का करने के समान पैदा फरमा दिया, दूसरी तरफ उस आग की नौयत तब्दील करने का गुण सिखा दिया। अपनी जलन को अल्लाह की मोहब्बत की आग में तब्दील करते रहो और उसके नतीजे में तुम्हारी इस्तेआनत में भी मजीद कुव्वत पैदा हो जाएगी और तुम्हारी जलन में लुत्फ पैदा हो जाएगा। बजाय इसके कि तुम बीमारियों में मुब्तला हो तुम तो शिफा घर बन जाओगे, तुम्हारा सीना दूसरों के लिए शिफा पैदा करने का मुझे बन जाए। बस ये है एक मफहूम सब्र एक ताल्लुक सब्र और सलात के दरमियान और ये तीनों लफ्ज एक दूसरे के साथ बांधे जाते हैं। एक और मफहूम इसका यह है कि जिन दिनों में भी मसायब का जोर हो तुम अपनी इबादतों को ज्यादा बढ़ाओ और गम और फिक्र तुम्हें इबादतों से गाफिल करने वाले ना बने बल्कि इबादतों की तरफ मुतवज्जे करने वाले बने। इसकी इसलिए भी जरूरत है इस नसीहत की और खासतौर पर याद कराने की कि बसा अवकात ये देखा गया है कि लोगों पर जब मसायब आते हैं या इम्तिहानों में मुब्तला होते हैं तो नमाजें छोड़ बैठते हैं बजाय इसके कि नमाजों को ज्यादा करें। और बाद लोग मुझे खत लिखते हैं कि अब तो हमारा नमाजों भी दिल नहीं लगता, पहले आदत थी अब ऐसे गम पड़े हैं कि हम बिल्कुल छोड़ बैठे हैं नमाज को, अब कोई मजा नहीं आता। पुरानी करीम फरमाता है कि यही वक्त है नमाजें बढ़ाने का, यही वक्त है नमाजों में ज्यादा तवज्जो करने का। चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि हमें तो जब भी कोई मुश्किल पड़े कोई मुसीबत हो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं और नमाज में गिरिया उजारी करके अपने सारे बोझ हल्के कर लेते हैं। तो नमाज में इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह का मज़मून है कि जब तुम्हारा गम बढ़े तो सब्र के साथ जब खुदा से मदद मांगो तो इबादत में का मेयार भी बुलंद करो और इबादत में ज्यादा वक्त गुजारा करो और इबादत में की जाने वाली इस्तेआनत
ज्यादा मुफीद साबित होगी।
इसका यानी इस्तियानत से भी ताल्लुक है कि इस्तियानत तुम बगैर इबादत के भी कर सकते हो और इबादत के साथ भी कर सकते हो। हम तुम्हें बताते हैं कि वस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, अपनी इस्तियानत जहां तक मुमकिन हो इबादत में किया करो, और इबादत में जो तुम सलाह से मदद मांगोगे वो ज्यादा मकबूल साबित होगी और तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। सबर में एक और भी मजमून पाया जाता है कि सबर अकेले करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए दुनिया में जितने शौरा हैं वो गम गुसार की तलब करते हैं, और ये ख्याल कर लेना कि अकेला इंसान सब्र करता रहे ये एक महज फर्जी बात है। हकीकत यह है कि सब्र होता नहीं अगर इंसान तन्हा हो और अकेला हो। जरूर चाहता है किसी को, जितना ज्यादा दुख में मुबतला हो और सब्र के साथ किसी दुख पर कायम रहना चाहे उतना ज्यादा वो मोहताज हो जाता है जरिए का, किसी मोनिस किसी गमखार का। तो खुदा तआला ने इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं फरमाया, इन्नल्लाह मास्ताबिरीन, अगर तुम हमसे मदद मांगोगे और इबादतों की तरफ मुतवज्जे होगे तो हम यकीन दिलाते हैं अपनी माइयत का, हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, तुम तन्हा नहीं पाओगे अपने आप को। और खुदा की माइयत में जिस आसानी से दुख कर सकते हैं किसी और माइयत में इस आसानी से दुख करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे अकलन भी ये बात दुरुस्त है, जाहिर बात है, लेकिन इसमें बहुत ही एक प्यार का मजमून दाखिल हो गया है। इन्नल्लाह माफ साबरीन का एक और मतलब है, अमूमन उस मतलब की तरफ तवज्जो जाती है, और वो ये है कि अल्लाह मोमिनों को सब्र करने वालों की मदद करता है, सब्र करने वाले आखिर कामयाब होंगे। ये दुरुस्त है, ये मजमून लाजमन इस आयत में शामिल है और बज़ाहिर इसी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन मेरे नजदीक इसमें प्यार का मज़मून दाखिल है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तेरे तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें क्या गम है, अकेले तो वक्त नहीं काटोगे, अकेले काटने के लिए कहा जाए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं कि हम ऐसी हालत में तुम्हारे साथ रहा करेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मजमून उस मजमून से बुलंद है जो फरिश्तों की माइयत का मजमून एक और आयत में बयान हुआ है। उसमें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम फरिश्ते उतरते हैं ऐसे लोगों पर और वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन उसका ताल्लुक इस्तकामत से रखा गया। यहां सब्र के साथ खुदा की माइयत का वादा है, और हमेशा जहां जहां भी कुरान करीम में सब्र का मजमून आया है वहां खुदा की माइयत के माने भी, अगर हर जगह नहीं तो बाद जगह नुमाया तौर पर बयान हुए हैं, बाद जगह उस मानी का मजमून दाखिल है वहां। और अल्लाह ताला का साथ और सब्र ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यवस्था मजामी है, उससे मैं समझता हूं कि सब्र का फल ज्यादा बुलंद है महज इस्तकामत के फल से। इस्तकामत में ये बात दाखिल है कि आदमी बेवफाई न करे और अपने मकसद को छोड़े नहीं, लेकिन सब्र के मजमून में कुछ और बातें ऐसी दाखिल हो गई हैं जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इसका फल खुद अपने आप को करार दिया, और वही प्यार का मजमून मेरे नजदीक इसमें दाखिल। अपनी आग को मोहब्बत इलाही की आग में तब्दील करना अल्लाह के प्यार की आग का बड़ी कुव्वत के साथ भड़क उठना दिल में गमों के बाद, उसके नतीजे में लाजमी खुदा का अपना आना जरूरी हो जाता है। अगर गम महज मदद मांगने की एक कुव्वत बन जाए तो उसके नतीजे में फरिश्तों का आना काफी है, मदद के लिए आए हैं हम, तुम्हारी मदद करेंगे, फिक्र ना करो, तुम्हारे गम भी दूर हो जाएंगे, तुम्हें खुशखबरियां भी देते हैं। लेकिन अगर गमों की आग खालिसतन अल्लाह के प्यार की आग में भड़क उठे, तो उसका जवाब ये है ही नहीं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे यहां भी और वहां भी, तुम फिक्र न करो। उसका जवाब ये है कि जिसकी मोहब्बत में तुम अब जल रहे हो वो आगे है तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सब्र के मजमून में ये आयत हर से आखिर है, आखिरी सबसे बुलंदतर मकसद भी बयान हुआ और सबसे बेहतरीन फल जो सब्र के नतीजे में इंसान को मिल सकता है उसका भी जिक्र फरमा दिया। बस इस दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हमारे लिए इस आयत, ये आयत एक काफी आयत साबित होनी चाहिए। हर वो बात जो इस दौर से ताल्लुक रखने वाली हमें सिखाने के लायक है, कुरान करीम की इस ये आयत हमें वो सिखा रही है। इसलिए ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन अगर इस वक्त के गुजरने के बाद के बावजूद हमने इस आयत से फायदा ना उठाया हो तो बड़ी बदकिस्मती होगी। वक्त गुजरेगा और फतह के साथ गुजरेगा, इसमें कोई भी शक नहीं, खुदा के वादे लाजमी पूरे होंगे, मगर इस आयत में जो वादा है वो और है, वो ये है कि मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। इस वादे की तमन्ना करें, इस मकसद के हसूल की तरफ मुतवज्जे होकर ये वक्त गुजारने की कोशिश करें कि इस इब्तला में से जब हम गुजरें तो सब बातों का माहसल आखिरी ये हो कि खुदा हमारा हो चुका और हमारे साथ रहने वाला बन। अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक अता फरमाई।